पृष्ठ संख्या 8, मीर तकी मीर, सितंबर 1722, 23, 25 से 20 सितंबर 1810 ईस्वी। मुझको शायर न कहो मीर की साहब, मैंने दर्दो गम कितने किए जमा तो दीवान बना। दर्द और गम में सारा जीवन व्यतीत करने वाले उर्दू के सर्वश्रेष्ठ शायर मीर तकी मीर का जन्म अकबराबाद आगरा में हुआ था। उनके पिता मुहम्मद अली सूफी फकीर थे और अपने नन्हे बेटे को प्रेम का पाठ पढ़ाया था। उन्होंने सिखाया था कि जगत में प्रेम के सिवा कुछ भी नहीं है, प्रेम के कारण ही संसार में जीवन की नदी बह रही है। उन्होंने संतोष और मानव कल्याण की भी शिक्षा दी थी। मीर जब 11 साल के थे तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई। उस समय उनका परिवार बेहद अभावग्रस्त था। घर पर 300 रुपये का कर्ज था और पैतृक संपत्ति के नाम पर कुछ किताबें थीं। पिता की मृत्यु के बाद सौतेले भाइयों ने इतना कष्ट पहुँचाया कि उन्हें आगरा छोड़कर दिल्ली जाना पड़ा। दिल्ली में बादशाह मुहम्मद शाह के एक दरबारी शमसामुद्दौला से इनकी निकटता हो गई और उन्होंने मीर को 1 रुपया रोजाना का वजीफा देना शुरू किया, जिसके बाद ही वापस आगरा आ गए। लेकिन 1739 ईस्वी में दिल्ली पर नादिर शाह के हमले से शमसामुद्दौला मारे गए और वजीफा बंद हो जाने से फिर फाका कशी के शिकार हुए। इस बार दिल्ली उजड़ी हुई थी, बेरोजगारी और गरीबी ने उन्हें विक्षिप्त कर दिया था। इस विक्षिप्त अवस्था में वे एक काल्पनिक या वास्तविक सुंदरी से प्रेम करने लगे। दिल्ली में उन्होंने कई अमीरों के यहाँ नौकरी की, लड़कों को पढ़ाया और दूसरे काम किए। उनकी प्रारंभिक शिक्षा अपने सौतेले भाई के मामू खान ए आरजू के यहाँ हुई, जो बहुत बड़े विद्वान और शायर तथा अरबी, फारसी, हिंदी, संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। वे अनेक कवियों के गुरु थे। मीर कुछ दिन उनके आश्रय में रहे, लेकिन वहाँ से उन्हें हटना पड़ा। इसके पीछे कुछ लोगों का कहना है कि मीर अपने गर्म मिजाज और स्वाभिमान के कारण वहाँ से हटे, और कुछ लोगों का कहना है कि वह जाने आरजू की बेटी से प्रेम करने लगे थे। 25-26 वर्ष की उम्र तक मीर एक दीवाने शायर के रूप में प्रसिद्ध हो गए। सन 1778 ईस्वी में वह मालवा पृष्ठ संख्या 9 के सूबेदार के बेटे के मुशाहिब बन गए थे, किंतु 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली ने दिल्ली को फिर बर्बाद कर दिया और इसमें मीर का घर भी उजड़ गया। उन्होंने 1747-48 में पहला विवाह और पति के मृत्यु के काफ़ी बाद में 1783-84 ईस्वी में दूसरा विवाह किया। मीर और दिल्ली दोनों की हालत एक जैसी थी। लगभग 1782-83 ईस्वी में नवाब आसफुद्दौला के आगरा पर वह दिल्ली छोड़कर लखनऊ आ गए। लखनऊ उन्हें रास नहीं आया। 20 सितंबर 1810 को उनका निधन हो गया। मीर जहाँ दफन हुए वहाँ लखनऊ स्टेशन है। रचनाएँ रचनाएँ मीर की गज़लों में 6 दीवान संग्रह हैं, जिनमें 2000 से अधिक गज़लें हैं। इसके अलावा कुल्लियाते मीर में दर्जनों मशनविया, कशीदे कसीदे और वासोढ़त उपालम्ब संकलित हैं। मीर ने जिक्रे मीर नाम से आत्मकथा तथा निकातुश शोरा नाम से एक कविता वृतांत लिखा है। मीर तकी मीर उर्दू के एक ऐसे श्रेष्ठ और महान शायर थे जिनकी कविता की उत्कृष्टता को प्रत्येक आलोचक ने मुक्त हृदय से स्वीकार किया है। आलोचकों ने उन्हें कवि सम्राट की उपाधि से विभूषित किया है। उर्दू गज़ल में मीर की हैसियत एक नेतृत्वकर्ता की है। उर्दू गज़ल की परंपरा उन्हीं से शुरू हुई। उन्होंने उर्दू कविता को चीज़ें दी, अभिव्यक्ति की सरल शैली और प्रेम की तड़प। वे बड़े नाजुक मिजाजी, स्वाभिमानी और गंभीर व्यक्ति थे। उनके इस व्यक्तित्व की झलक उनकी शायरी में लगातार दिखाई पड़ती है। उर्दू शायरी के नए आंदोलन के पुरस्कर्ता 8 मुगल ताजदारों से जमा किए गए खजाने को 10,000 ऊँटों, 10,000 घोड़ों, 3,000 हाथियों पर लाद ले गया। क्या कहिए, अपने हाथ में जितने अमीर थे, टुकड़े पर जान देते थे, सारे फकीर थे। उनके विषय में प्रसिद्ध शायर अली सरदार जाफरी का कहना है कि शायर को खुदा का शिष्य भी कहा गया है और पैगंबर का भी स्थान दिया गया है। लेकिन मीर तकी मीर अकेले शायर हैं जिनको खुदा या सुखन, शायरी का खुदा कहा जाता है। उर्दू के सब शायरों की सूची में सबसे ऊपर मीर का ही नाम रहेगा। हर काल में बड़े से बड़े शायर ने मीर का नाम आते ही अपना सर झुका लिया है। दीवाने मीर की भूमिका से मुहम्मद हुसैन आज़ाद ने अपनी किताब आवे हयात में मीर की प्रशंसा करते हुए ये लिखा है कि कद्रदानों ने उनके कलाम को जौहर और मोतियों की निगाहों से देखा और नाम को फूलों की महक बनाकर उड़ाया। पृष्ठ संख्या 10। बात उन्हीं को नसीब हुई है कि मुसाफिर गज़लों को तोहफे के तौर पर शहर से शहर ले जाते थे। उद्धृत दीवाने मीर पृष्ठ संख्या 6।